ओम शांति, ओम शांति। हम सभी विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने हमें अपने ही समान विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनाया है। बाबा बच्चों को अपने समान ही बनाते हैं, तो विश्व परिवर्तन का कार्य, विश्व कल्याण का कार्य बाबा केवल खुद नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हम सब बच्चों के सहयोग की उंगली भी लगी है। और उसका यादगार है भागवत में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठाया, लेकिन केवल कृष्ण ने उंगली नहीं लगाई, साथ में कौन थे? गोपियां भी थी। तो वो गोपियां किसका यादगार है? हम बच्चों का। तो सभी ने मिलकर वो पर्वत उठाया और वो गोवर्धन पर्वत कोई मिट्टी का पर्वत नहीं है, वो तो ये कलयुगी पर्वत है। इस कलयुगी पर्वत को हमने शिव बाबा के साथ मिलकर उठा लिया और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना की। बाकी कृष्ण की जगह, ना कहते हैं शिव की जगह कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। तो हम सब बाबा के बच्चे, विश्व सेवाधारी बच्चे हैं, वो विश्व सेवा का ताज हम सबके सिर पर है। फिर चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे वो 80 साल से बाबा के यज्ञ में हैं और चाहे वो बहुत नए कुछ समय से ज्ञान में आए हैं। मैं समझती हूँ आप में से कुछ भाई बहने पहली बार आए होंगे, मधुबन में बैठे हैं यहाँ जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। देखिए काफी हैं, ज्यादातर क्लास में वही बैठे हैं। तो चाहे हम एक साल से ही ज्ञान में हैं, चाहे हम कुछ महीनों से भी ज्ञान में हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे हम विश्व सेवाधारी हैं। हाँ, कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो हम सबकी जिम्मेवारी विश्व सेवा की एक जैसी है और जितना हम सेवा में रहते हैं, जैसे हम याद के लिए कोशिश करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा हमारी याद की स्थिति रहे, बाबा से हमारी बुद्धि की लिंक जुड़ी रहे, टूटे नहीं, भले नहीं जुड़ पाती है लगातार, पर कोशिश तो हमारी यही रहती है। तो वही कोशिश हमारी सेवा के लिए भी रहे कि जैसे हम निरंतर योगी बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही किसी ना किसी प्रकार की सेवा भी होती रहे। तो याद और सेवा का बैलेंस अगर है तो ब्लेसिंग्स हैं। बाबा कहता है बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ब्लेसिंग्स बाबा की भी हैं और साथ साथ परिवार, जिन आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आत्माओं के लिए, हम आत्माओं के लिए उड़ती कला का आधार बन जाती हैं। खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है जो हम अनुभव करते हैं। हल्कापन हम अनुभव करते हैं और जो भी हमारे पाप कर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर का, वो बोझ सहज उतरने लगता है। तो कई प्रकार की सेवा हम सारे दिन में कर सकते हैं। सेवा तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन बात है कि निरंतर सेवा में उसे कैसे परिवर्तन करें। तो कई प्रकार की सेवा में बाबा कहते हैं हमारी स्वयं की सेवा है, यज्ञ सेवा है, विश्व की सेवा है, मनसा सेवा है। हम कहेंगे तन मन धन से या मनसा वाचा कर्मणा, इन सब तरह से हम सेवा करते हैं, पूरी तरह से अर्पण। जैसे अभी हम गीत सुन रहे थे, पूरी तरह से तन मन धन से बाबा के लिए हम समर्पित हैं, बलिहार हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं? तो सबसे पहली सेवा हमारी शुरू होती है स्वयं से, क्योंकि स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्वयं का परिवर्तन किए विश्व का परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। तो स्व की सेवा माना स्वयं को ज्ञान स्वरूप बनाना, धारणा स्वरूप बनाना, याद स्वरूप बनाना। जो भी सब्जेक्ट है, हमारे चार सब्जेक्ट हैं, वो चार सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना, संपन्न और संपूर्ण मुझे बनना है चारों सब्जेक्ट में, वो पुरुषार्थ, वो स्वयं की सेवा है। अब ज्ञान स्वरूप बनना माना जो भी ज्ञान हमने समझा है, चाहे वो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, समय का ज्ञान, वो ज्ञान का हमें अनुभव हो, केवल सुनने तक ज्ञान स्वरूप नहीं कहेंगे। सुना और समझा वो एक स्टेज है, लेकिन अनुभव किया, मैं आत्मा हूं, उससे मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन अनुभव किया, देही अभिमानी स्थिति हमें कैसे विकारों से मुक्त करती है ना। कहते देह अभिमान विकारों की जड़ है, देही अभिमानी है तो उन्नति की सीढ़ी है। तो क्या हम ये अनुभव करते हैं? अगर मेरी आत्मिक स्थिति है, बाबा कहता है देही अभिमानी मीठे होते हैं, इसका मतलब नम्रता आ जाती है जीवन में, हम खुद का भी सम्मान करते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं। अगर देह अभिमान समाप्त हुआ है तो उसकी ये निशानी है कि अनेक प्रकार के दैहिक आकर्षणों में बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि देह से ऊपर हमें पता है आत्मा है। तो वो अनुभव जीवन में, उसका अनुभव, आत्मिक स्थिति का अनुभव। ऐसे ही हमें तीनों कालों का ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान माना तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी हम बाबा के बच्चे हैं, तो हर समय के राज को जानते हैं, वर्तमान समय के राज को भी जानते हैं। तो चाहे कितने भी विघ्न परिस्थितियां आएंगे, वो हमें हलचल में नहीं ला सकते, क्योंकि हमें पता है ये सब क्यों हो रहा है और होना है तो क्यों होना है, हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होंगे, पता है कि इसमें भी कल्याण है, तो फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन अगर फिर भी हम क्यों क्या के प्रश्न में चले जाते हैं, पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, समझा है बाबा से जो हुआ था उसमें कल्याण था, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, जो होगा वो भी कल्याणकारी होगा, लेकिन फिर भी हलचल में आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शिव बाबा मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं, बाबा ये परिस्थिति क्यों आ गई। कभी बार हम ऐसे प्रश्नों में चले जाते हैं, तो इसका मतलब अभी तक हमें उस ड्रामा की नॉलेज का अनुभव नहीं है। नॉलेज है लेकिन उसको यूज हमने नहीं किया, उसका स्वरूप हम नहीं बने हैं, तो ड्रामा का फुल स्टॉप नहीं लगता हमसे। तो ये स्वयं के लिए जो पुरुषार्थ है वो अटेंशन और चेकिंग है, हर बात में अटेंशन, और अपनी चेकिंग करके चेंज करना, किस बात में कमी है उसमें अपने आप को संपूर्ण बनाना, ये पहली सेवा है। धारणा स्वरूप बनते हैं तो गुणों से हम स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी हम संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्टता उसकी निशानी है। अगर हम धारणा स्वरूप हैं तो जीवन में संतुष्टता और प्रसन्नता रहेगी। और दूसरा, हम यज्ञ सेवा करते हैं, लेकिन जो यज्ञ सेवा होती है वो तो चांस के प्रमाण है, समय के प्रमाण है। आप सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम रखा गया, तब भाई बहनों के सहयोग की जरूरत होती है, क्योंकि बड़े कार्यक्रम कोई दो चार लोगों से नहीं होते हैं, उसमें काफी भाई बहनों का सहयोग चाहिए। तो लगभग सभी भाई बहनें उसमें कोई ना कोई प्रकार की ड्यूटी करते हैं, उनको सेवाएं दी जाती हैं, और जब वो सेवा करते हैं तभी वो कार्य सफल होता है। या हम बाबा के घर में आते हैं, जब सीजन में आते हैं तो महायज्ञ की सेवा का चांस भी हमको मिलता है। यहाँ भी वैरायटी सेवाएं, वैरायटी ड्यूटीज होती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन साल में एक बार या दो बार, इससे अधिक तो मधुबन में आकर के सेवा नहीं कर पाएंगे, या सेंटरों पर भी जब जब प्रोग्राम होंगे तब आपको वो सेवा का चांस मिलेगा। लेकिन जब हम यज्ञ सेवा में आते हैं तो फिर हमें संगठन में आकर के सेवा करनी पड़ती है, और जहां संगठन होता है वहां सेवा में कई प्रकार के विघ्न भी आ सकते हैं, क्योंकि संगठन में आए माना अलग अलग आत्माएं, अलग अलग प्रकार के संस्कारों की हैं। अब जिस तरह से मैं कोई काम को करना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरी आत्मा भी उसी तरह से करना चाहती है, उनका करने का तरीका हमसे अलग हो सकता है और हम एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मतभेद हो जाएगा, कभी संस्कारों का टकराव हो जाएगा, थोड़ा बहुत कहा सुनी भी हो सकती है। तो अगर सेवा में ये स्थिति पैदा हो रही है कि हम चार लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं और कहां हमारी उसके कारण कहा सुनी हो गई, तो उसको हम निर्विघ्न सेवा नहीं कहेंगे। जब हम मिलकर सेवा करते हैं तब फिर एक ने कही दूसरे ने मानी, उसको कहते हैं ज्ञानी। हो सकता है उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे अपना देह अभिमान थोड़ा छोड़ना भी पड़े, हो सकता है मैं सही हूँ तो भी मुझे झुकना पड़ता है, कोई मेरे से थोड़ा सीनियर है वो कोई बात कह रहा है वो मुझे सही नहीं भी लग रही है, तो भी सेवा निर्विघ्न चले उसके लिए हमने फिर भी हाँ जी कह दिया। तो इस तरह से हम यज्ञ सेवा को सफल बनाते हैं। और कई बातों में अगर यज्ञ में विघ्न आते हैं तो हम यज्ञ रक्षक भी हैं, बाबा के यज्ञ के हम बच्चे हैं, तो हमारा फर्ज है कि बाबा के यज्ञ की सेवा में कोई विघ्न आ रहे हैं तो फिर जो रक्षा हम कर सकते हैं वो हम अवश्य करें। अभी भी हम सुनते हैं मीडिया में तरह तरह की समाचार चल रहे हैं, है ना, एक शंकर पार्टी है बनी हुई, उन्होंने एक विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खुला हुआ है और उसकी न्यूज चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे ज्ञान से जुड़े हुए हैं। अब जब लोगों को पता चलता है, जब वो ऐसे समाचार सुनते हैं तो आपसे वो सवाल पूछेंगे, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो क्या ये वही संस्था है, क्या वहां ऐसा होता है, हाँ? तो हम जवाब दे सकते हैं उनको, नहीं दे सकते? दे सकते हैं, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है वो अपने अनुभव से हम उनको सत्य का साक्षात्कार करा सकते हैं, लेकिन पहले हमारा निश्चय, हमारी जो स्थिति है वो इतनी ऊंची और श्रेष्ठ होगी, तो हम उनको उस तरह से उस बात का जवाब दे सकेंगे। तो कभी भी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, आने वाले समय में होती रहेंगी, कोई ना कोई ऐसे विघ्न रूप आत्माएं बनती हैं, तो फिर हम उसके लिए भी तैयार रहें कि हम बाबा के बच्चे, बाबा की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। तो निर्विघ्न सेवा, निस्वार्थ सेवा, निमित्त भाव से सेवा, उसका महत्व है और उसके हमारे फुल मार्क्स जमा होते हैं। मैंपन से सेवा नहीं, मेरी ये विशेषता है, जैसे आज का वरदान था, बाबा ने आज वरदान में कहा मेरी कला है, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है। कई बार हमें अपनी विशेषता के अनुसार सेवा मिलती भी है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भी निमित्त भाई बहने होते हैं, जिसकी जो विशेषता होती है उसके अनुसार ही उनको सेवा देते हैं। पर फिर भी हो सकता है कि कई बार पहले से ही आपकी विशेषता की सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं और आपको वो सेवा नहीं मिली, उसकी बजाय आपको साधारण सेवा मिल गई। मानो आप यज्ञ में हम आए, खाना परोसने की सेवा मिल गई, खाना बनाने की, सब्जी काटने की सेवा, और भी कई ऐसी स्थूल सेवाएं हैं जो यज्ञ में अधिक आवश्यकता होती है जिसकी, और हमें वो सेवा मिल गई। लेकिन हम अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हम टीचर हैं वहाँ, या मानो मैनेजर हैं या बिजनेसमैन हैं, कोई भी ऐसे अच्छे पद पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन सेवा हमको साधारण मिल गई। तो कई बार व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं, हम तो ये भी सेवा कर सकते हैं, हमको ये सेवा क्यों दे दी गई। लेकिन जो भी सेवा हमें मिले, जो भी बाबा की सेवा मिले, वो हम प्यार से यदि करते हैं, निमित्त भाव से करते हैं, तभी हमें वो जमा होता है। और नहीं तो हमने सेवा तो की, जो सेवा मिली वो मैंने कर ली, लेकिन अगर मेरा मैपन आ गया, व्यर्थ संकल्प चल गए, तो फिर हमारा जमा नहीं होता है। भले किया हमने, लेकिन बाबा के पास वो जमा नहीं होगा। और इसीलिए बाबा निर्विघ्न सेवा की बात करते हैं। तो ये हमें अटेंशन देना है कि हम सेवा कर तो रहे हैं, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं। तो दिल से सेवा करना और एक नाम कमाने के लिए सेवा करना, उसमें भी अंतर होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा स्वार्थ है अगर सेवा के पीछे, तो वो भी उतना जमा नहीं होता है। यानी उसकी जो दुआएं हमें अनुभव होनी चाहिए वो हमें नहीं होती। सच्ची सेवा मतलब संतुष्टता और खुशी का अनुभव जरूर कराएगी, पर अगर सेवा करने के बाद मुझे संतुष्टता नहीं मिली या खुशी नहीं मिली, इसका मतलब वो मैंने सच्ची सेवा नहीं की। तो ये यज्ञ सेवा हम बाबा के बच्चे करते हैं। और विश्व सेवा की बात यदि हम करें, तो हम वाचा सेवा के द्वारा विश्व की आत्माओं की, अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं की, चाहे हम बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए हम लेक्चर देते हैं, हम भाषण करते हैं, आजकल हमारे टीवी चैनल हैं, तो उस चैनल के माध्यम से भी हम लाखों लोगों तक पहुंचते होंगे, चलो कोई कोई करोड़ों लोगों तक भी पहुंचते हैं, वो कितना लोकप्रिय है उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व की आत्माओं तक हम नहीं पहुंच पाते, उसकी हद है। और वाचा सेवा भी ऐसी सेवा है जिसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, और वो भी चांस के प्रमाण ही होती है कि चांस मिलेगा तब वो सेवा करेंगे। लेकिन अगर हम विश्व की आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर सहज साधन जो बाबा ने दिया है वो है मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना से सेवा, शुभ वृत्ति, शुभ वाइब्रेशन से सेवा। तो जितना हम अपने मन में विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उतना हम पूरे विश्व की आत्माओं को एक स्थान पर बैठे हुए भी वाइब्रेशंस दे सकते हैं, और ये सेवा भी हम करते हैं। लेकिन इसमें चांस की बात नहीं है, हम जब चाहें ये कर सकते हैं, पर इसके लिए सिर्फ स्थिति की बात है। क्योंकि मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है। सूक्ष्म सेवा का अर्थ क्या हुआ, हमें दिखाई नहीं देती है, बाकी सेवाएं तो देखने में आती हैं, आप कर्मणा सेवा कर रहे हो, पता चलता है कि हाँ आप यज्ञ में कोई सेवा दे रहे हैं, वाचा सेवा कर रहे हैं वो भी देखने में आती है, लेकिन मनसा सेवा, मन के वाइब्रेशंस, वो तो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, अनुभव होते हैं, लेकिन जितना सूक्ष्म है उतना ही वो शक्तिशाली है, देखने में नहीं आ रहा लेकिन उसके जो परिणाम है वो सबसे श्रेष्ठ है। जो सेवा हम बोलकर नहीं कर सकते, जो सेवा हम कर्म के माध्यम से नहीं कर सकते, वो हम अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन के द्वारा कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कि कई बार हम इसमें असफल रहते हैं। जिन आत्माओं के प्रति हम श्रेष्ठ वृत्ति वाइब्रेशन रखते हैं, श्रेष्ठ भावना रखते हैं, या जो भावना रखते हैं उस भावना के अनुरूप हमें वो परिणाम दिखाई नहीं देते, तो फिर हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारी मनसा सेवा काम नहीं कर रही है। पर हमारी जो स्थिति बाबा कहता है मनसा सेवा के लिए वो नहीं है, इसीलिए वो वाइब्रेशन काम नहीं कर रहे। बाबा कहता है हमारी मनसा सदा ही निस्वार्थ होनी चाहिए, सदा ही दातापन की भावना होनी चाहिए, सदा ही शुभ होनी चाहिए, कभी शुभ है कभी अशुभ ऐसा नहीं, चेंज होती रहती है वृत्ति, एक जैसी तो नहीं रहती है हमेशा, हमेशा ही श्रेष्ठ वृत्ति है, उसकी बजाय कभी हम किसी के बारे में नेगेटिव भी सोचते हैं, बुरा भी सोच लेते हैं, भले करते नहीं हैं, ब्राह्मण है तो करने तक हम कम आते हैं, लेकिन मन में संकल्प तो चल जाते हैं। जो हमारे प्रति शुभ भाव रखता है, हमारे प्रति स्नेह रखता है, उसके प्रति हमारी शुभ भावना रहती है, और वो तो नेचुरल है, अज्ञानी लोग भी ऐसा रखते हैं, लेकिन जो मेरे प्रति शुभ भावना नहीं रखता या कोई हमसे ऐसा व्यवहार करता है उसके प्रति भी शुभ भावना रहे, यही ज्ञान है, वही ज्ञान की शक्ति है हम ऐसा कहेंगे। तो यदि हम वो रख पाते हैं तब हमारी मनसा के वाइब्रेशंस उन आत्माओं के लिए काम करते हैं, और नहीं तो वो भी हमारी वृत्ति से समझ जाते हैं, क्योंकि भले हम बोले नहीं कुछ भी मुख से, लेकिन बोलने से पहले हमारे वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंच जाते हैं, उनको प्रभाव डालते हैं। तो मनसा सेवा करने के लिए ये विशेष कंडीशन है कि हमारा मन शक्तिशाली हो, मन लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में हो। तो जैसे लाइट हाउस समुद्र में होता है तो मीलों तक उसकी लाइट जाती है, और कहीं मीलों दूर भी जहाज होगा तो उसको पता चल जाता है कि तट इतना दूर है, वहां से वो लाइट आ रही है, तो वो किनारा दिखाता है, लाइट हाउस किनारा दिखाता है जहाज को। ऐसे ही यदि हम लाइट हाउस माइट हाउस की तरह हैं, तो फिर कितनी भी मीलों दूर यानी दुनिया के किसी भी कोने में कोई आत्मा होगी और हम उसके प्रति जो संकल्प करना चाहें वो सिद्ध होगा, पर लाइट हाउस की स्थिति और हम कहेंगे कि एक बल्ब की स्थिति, उसमें अंतर होता है ना। अब लाइट हाउस की लाइट मीलों दूर जाती है, एक बल्ब की लाइट कितना होती है, यहाँ पावरफुल फोकस चलेगा तो समझो एक हॉल में रोशनी हो रही है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता है वो, एक 60-100 वॉट का बल्ब चल रहा है एक कमरे में रोशनी हो जाएगी, हाँ एक 0 वॉट का बल्ब चल रहा है रोशनी तो होगी लेकिन बहुत कम। तो मेरे मन का मन रूपी बल्ब कितना पावरफुल है, 0 वॉट की रोशनी वाला है, 1000 वॉट की रोशनी वाला है, या लाइट हाउस की रोशनी वाला है। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति भरती है, याद की स्थिति, पावरफुल स्थिति, एकाग्रता की स्थिति हमें लाइट हाउस की स्थिति का अनुभव कराती है जब हमारा बहुत पावरफुल योग होता है, जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। बाबा की लगन में हम मगन हैं, बाबा के लव में लीन हैं, उस अवस्था में हमारे मन की स्थिति लाइट हाउस होती है। लेकिन हमेशा हमारे मन की स्थिति इस प्रकार की नहीं रहती, सारे दिन में मन की लीकेज, शक्ति की लीकेज होती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को उलझा लेते हैं। योग किया तब तो ठीक, लेकिन जब कार्य व्यवहार में आए तो कई बातें आती हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, बहुत लोग काम पर भी जाते हैं, तरह तरह के लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं वातावरण ऐसा था इसलिए मन पर प्रभाव आ गया, कई बार हम सोचते हैं संग ऐसा था ना इसलिए मन पर असर आ गया, मेरा मन अशांत हो गया, मेरा मन परेशान हो गया। अशांत परेशान मन शक्ति को खत्म करता है। जो भी शक्ति हमने जमा की उसकी लीकेज हो गई। ऐसे है जैसे कोई बाल्टी को हम भरना चाहते हैं और उसमें नीचे एक छेद है, पानी भरेगा और छेद से बहेगा, वो बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी, कितना भी आप पानी भर लो लेकिन नीचे से तो वो पानी बह रहा है। हमारे मन की शक्ति की भी यही स्थिति होती है कि योग में हम भरते हैं, अमृत वेले हम भरते हैं, मुरली से हम भरते हैं और सारा दिन में क्या करते हैं, सारा दिन में गमाते हैं उसको। शाम को अगर दोबारा योग नहीं किया तो मन की स्थिति इतनी कमजोर है कि मैं ही शांत नहीं हूं। अगर मैं ही शांत नहीं हूं तो क्या मैं किसी आत्मा को शांति का दान दे सकती हूं? अगर मैं ही सुखी नहीं हूं तो क्या मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकती हूं? तो पहले मेरी स्थिति सदा एकरस हो, सदा ही मन शांत हो, सदा ही मन शुभ हो, सदा ही मन शक्तिशाली हो, तो वो स्थिति हमें बनानी है समर्थ संकल्पों के द्वारा। और वो समर्थ संकल्प, उसका आधार ज्ञान का चिंतन है। बाबा कहता है मुरली केवल सुननी नहीं है लेकिन विचार सागर मंथन करना है। अगर हमने सुन लिया, ब्राह्मण जीवन का नियम है, नियम है पालन तो किया ना, एक बार मुरली तो सुनी ली बाबा की, हमारी प्रेजेंट मार्क तो हो ही गई। लेकिन अगर हमने मुरली पर ध्यान नहीं दिया, बाद में उसको रिवाइज नहीं किया तो हम भूल जाते हैं, एक दो घंटे तक उसका असर रहता है। मुरली सुनते हैं ना क्लास के बाद, एक दो घंटे तक मन उतना लाइट रहता है, लेकिन जैसे ही हमने और सब कारोबार में बुद्धि लगाई, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं बाबा ने क्या कहा और हमारे वही पुराने संस्कार, पुरानी वृत्तियां इमर्ज होने लग जाती हैं। होता है नहीं होता ऐसा? अब जैसे हमें कहा, कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमें पता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमें नेगेटिव बनाते हैं, तो दिन में कोई ना कोई टाइम उसका असर जरूर हो जाता है मन पर। कभी काम विकार के वश थोड़े बहुत संकल्प चल गए तो वो भी लीकेज है, कभी गुस्सा आ गया, पता है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें सबको सुख देने वाले मीठे बोल बोलने हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि हमें गुस्सा नहीं आता है? आप सबसे पूछते हैं हम क्रोध मुक्त हो गए हैं? जो समझते हैं कि बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई मेरी बात नहीं माने, चाहे कोई मुझसे झूठ बोल दे, चाहे कोई मुझे धोखा दे दे, चाहे कोई मेरी इंसल्ट कर दे, तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो हाथ उठाओ, देखें कितने जोर से लंबा हाथ उठाओ जो जो हाथ उठा रहे हैं। हाँ देखो 10-15 लोग तो पास हैं इस सभा में, उनके लिए ताली बजाओ। हाँ वो तो वो खुद ही जानते हैं कि सचमुच उन्होंने क्रोध को कितना जीता है, लेकिन अगर हाथ उठाया है तो कहीं किसी हद तक तो जरूर जीता है। तो अगर गुस्से का असर आ गया मेरे ऊपर, मैंने गुस्सा कर दिया, बाबा हमें कहता है परिस्थितियां तो आएंगी ना, वही तो हमारा टेस्ट पेपर है, ऐसे थोड़ी कि कोई बात ही नहीं होगी तब हम विजयी किस पर बनेंगे। कोई परिस्थिति आएगी तभी विजयी बनेंगे, तभी तो विजयी रतन कहलाएंगे। तो अगर हम अभी भी इन नकारात्मक स्थितियों के प्रभाव में आ जाते हैं और अपनी शक्तियों को खो देते हैं, तो फिर हम मनसा सेवा वाली स्टेज पर नहीं है। नहीं तो मनसा सेवा सबसे सहज सेवा है, एक बीमार भी उसे कर सकता है। कोई बिस्तर पर है, मरीज है, तो भी अगर मन स्वस्थ है तो वो विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकता है। और बाबा कहता है सभी सेवाओं के मार्क्स बराबर हैं, चाहे आप स्व की सेवा करते हो, चाहे आप यज्ञ की सेवा करते हो, चाहे आप वाणी के द्वारा सेवा करते हो, चाहे आप मनसा सेवा करते हो, सभी के 100 मार्क्स हैं। तो सारे दिन में हम अगर चारों प्रकार की सेवा कर रहे हैं तो हम स्वतः ही निरंतर सेवाधारी हो जाते हैं, क्योंकि हर समय कोई ना कोई प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दूसरी सेवा नहीं है तो स्व की सेवा तो सदा ही है, हम जब चाहें अपने स्व की सेवा कर सकते हैं। स्वयं को पुरुषार्थ में हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना ही है, वो नहीं तो हम मनसा सेवा यानी दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हैं। वृत्ति से हमको वायुमंडल बनाना है तो अपने आसपास के वायुमंडल को हम पावरफुल बनाएं, अपने सेंटर के वायुमंडल को हम पावरफुल बनाएं, अपने घर के वायुमंडल को हम पावरफुल बनाएं। और नहीं तो बाबा कहता है कि अगर हम वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन नहीं कर रहे, ये अंतिम समय की जो सेवा है उसका हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और यही सेवा अंत में रहेगी। मनसा सेवा वो सेवा है जब अन्य सेवाएं हम कोई नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसी परिस्थितियां होंगी कि हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, कर्फ्यू लग जाएगा मानो चारों तरफ, तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सेवा हम फिर भी कर पाएंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब हम इस सेवा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और उसके लिए मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। अगर मन में कोई व्यर्थ संकल्प उठा और मैंने कहा स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाए। जैसे गाड़ी चल रही है और उसको ब्रेक लगाते हैं, तुरंत ब्रेक लग जाता है तब हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। अगर तुरंत ब्रेक नहीं लगेगा तो हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही मन की ब्रेक इतनी पावरफुल हो, और मन तो इतना तीव्र गति से चलने वाला है कि हम एकदम उसको ब्रेक नहीं लगा सकते जब तक कि हमें पहले से उसका अभ्यास नहीं है। तो हम अपने मन में शुभ चिंतन का अभ्यास बढ़ाते चलें, तो फिर हम मनसा सेवा सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जो हम संकल्प दूसरों के प्रति करते हैं उसका प्रभाव उन पर पड़ता है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग और प्रमाण आज हमारे सामने हैं। हम सब करते भी रहते हैं, हमने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं और उसका अनुभव भी किया है, ताकि हमें निश्चय हो। क्योंकि मनसा सेवा हमें दिखाई नहीं देती है कई बार, तो हम थोड़ा संशय में आ जाते हैं, पर कैसे वो काम करती है वो जब हम प्रयोग करते हैं तब हम उसको समझ सकते हैं, कि हम खुद उसका प्रयोग करके उसे अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी भी आती है और फिर हम आपको सुनाएंगे कि कैसे हमने अपने जीवन में कई बार इसका प्रयोग किया और उसमें सफलता मिली। एक बार एक राजा ने देखा कि उसके जो पड़ोसी राजा होते हैं वो शतायु होते हैं, लगभग 100 वर्ष जीते हैं, लेकिन हमारे राज्य की राजा की मृत्यु जल्दी हो जाती है, 50-60 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो नया नया गद्दी पर बैठा था, तो उसने सोचा कि हमें ये राज जानना चाहिए कि हमारे पड़ोसी राजा इतने दीर्घायु क्यों होते हैं, क्या उनका खान पान ऐसा है, या वो कोई ऐसा ही ऐसा कुछ लेते हैं, उनके जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं वो उन्हें कुछ ऐसा देते हैं जिसकी वजह से वो अधिक लंबी आयु जीते हैं। तो उसने अपने राज्य से एक दूत भेजा और वो दूत पहुंचा वहां पर और उसने अपने राजा का सवाल उनके सामने रखा कि हमारे राजा ये जानना चाहते हैं कि आप दीर्घायु शतायु कैसे जीते हैं। तो उसने कहा कि आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका जवाब मैं आपको कुछ समय के बाद दूंगा, आपको कुछ समय हमारे गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा और उस गेस्ट हाउस में आप तब तक रहेंगे जब गेस्ट हाउस के सामने जो हरा भरा पेड़ है वो सूख ना जाए, जब वो पेड़ सूख जाएगा तब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी शर्त है। उसने सोचा मेरी तो सारी जिंदगी यहीं बीत जाएगी क्योंकि इतना हरा भरा पेड़ कहाँ सूखेगा और कहाँ मुझे जवाब मिलेगा और बिना जवाब लिए तो मैं अपने राज्य में वापस नहीं जा सकता हूँ। पर अब जो शर्त रखी गई थी उसे माननी थी और वो वहां गेस्ट हाउस में रहने लगा। अब वो जब भी बाहर निकलता था उस पेड़ को देख करके उसके मन में यही एक विचार आता था कि ये पेड़ कब सूखेगा और कब मुझे जवाब मिलेगा। अब वो 10 बार जब बाहर निकलता था 10 बार उस पेड़ को देख करके क्या सोच रहा है, कब ये सूखेगा और कब मुझे जवाब मिलेगा। अब वो पेड़ सचमुच ही 5-6 महीने के बाद सूखने लगा। उसको आश्चर्य हुआ इतना हरा भरा पेड़ ये सूखने लग गया, इसका मतलब ये सूख सकता है। तो उसने और ज्यादा उसके बारे में सोचना शुरू किया कि ये कब जल्दी सूख जाएगा और कब मुझे जवाब मिलेगा। और 1 साल के अंदर अंदर वो पेड़ सूख गया और वो गया दरबार में खुश होकर के कि कहा कि जो आपकी शर्त थी वो पूरी हो गई, वो सामने वाला पेड़ सूख गया है, अब मुझे जवाब दीजिए। तो राजा ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उसने कहा कैसे? उसने कहा कि देखो आपने रोज उस पेड़ को देखकर क्या सोचा? उसने कहा यही सोचा कि ये सूख जाए और मुझे जवाब मिले। तो उसने कहा देखो आपके सोचने से वो पेड़ सूख गया ना। तो उसने कहा हाँ बराबर, मैं भी सोचता था कि ये तो सारी जिंदगी नहीं सूखने वाला है लेकिन ये पेड़ तो सूख गया 1 साल के अंदर। तो उसने कहा कि राजा की आयु भी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है उस पर निर्भर करती है। अगर राजा अपनी प्रजा को सुख देता है तो प्रजा दुआएं देती है और उन दुआओं से वो उसकी लंबी आयु की कामना करती है और राजा की आयु बढ़ जाती है। और यदि राजा प्रजा को दुख देता है तो प्रजा क्या सोचती है? हाँ, जितना जल्दी ये राजा से मुक्ति मिले उसकी मृत्यु की कामना करती है तो राजा की आयु कम हो जाती है। तो आपके राजा को आप कहें कि आप अपने प्रजा को सुखी रखें तो जितना आप उससे सुख देंगे उतना ही आपकी आयु बढ़ेगी। जैसे बाबा कई बार हमारी दादियों को कहते हैं कि हमारी दादियों की आयु इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि वो जो सबकी सेवा करते हैं और उस सेवा से उनको जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं उनकी आयु को बढ़ा रही हैं। तो ये मनसा सेवा की सिद्धि है। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन एक दो मैं आपके सामने रखूंगी कि कैसे हम दूसरों को सहयोग करते हैं। सूक्ष्म रूप में भी जो हम सहयोग करते हैं वो सचमुच उनके लिए काम करता है। तो एक बार हमारे ही कोई जानने वाले और उनकी जो बहन थी वो घर छोड़कर चली गई। आपस में उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके कारण भाई बहन का झगड़ा जैसे होता है हुआ और वो बहन घर छोड़कर चली गई। तो युद्ध थी वो उस समय और सबको घर में चिंता लग गई कि ये कहाँ चली गई। बहुत ढूंढा उसको, वो नहीं मिली क्योंकि वो शहर छोड़कर ही चली गई थी कहीं। अब दूसरे शहर में उसकी सहेली रहती थी वहां उसके पास वो चली गई और उसने सोचा कि वो कहीं नौकरी करेगी और अब वो वापस घर लौट कर नहीं आएगी। तो वो मुझे जानते थे तो उन्होंने मुझे फोन किया कि बहन जी ऐसी ऐसी स्थिति में हम हैं और आप हमारे लिए बाबा से योग करो। वो ऐसे समझते हैं कि हम बाबा के ज्यादा नजदीक रहते हैं तो शायद हम बाबा से योग लगाएंगे तो बाबा हमारी सुनेगा। हाँ उनसे ज्यादा हमारी सुनेगा, ये भाव होता है उनका। कई बार कई भाई बहने कहते हैं हमको कि बहन जी आप हमारे लिए बाबा से योग करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी आप कह रहे मैं योग करूंगी, वो बहन के लिए विशेष मैं योगदान दूंगी। तो मैं एक घंटा में खास योग में बैठी और मैंने उसको बहुत, क्योंकि मैं जानती थी तो मैंने उसी को अपने मन में रख करके बाबा से योग लगाया और उसको सद्बुद्धि मिले और वो घर वापस आ जाए, इस तरह से ऐसे शुभ संकल्प दिए। ऐसे दूसरे दिन भी योग किया मैंने, ऐसे दो तीन दिन उस आत्मा के प्रति योग किया और उनको ढूंढने से तो वो नहीं मिली, लेकिन सचमुच वो बहन एक हफ्ते के अंदर अपने आप घर वापस आ गई। और बाद में उसने बताया कि मैं तो फाइनल सोच करके गई थी कि मुझे कभी घर नहीं लौटना है, लेकिन बार बार मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो मैं घर वापस आ गई। ऐसे ही एक पेशेंट के प्रति, मैं हॉस्पिटल में थी, ग्लोबल हॉस्पिटल में थी, कई पेशेंट्स पर हमने ये प्रयोग किए हैं, लेकिन फिर भी एक पेशेंट का आपको सुना रहे हैं कि स्वाइन फ्लू आप जानते हैं आजकल ये बीमारी बहुत सुनने में आती है और कुछ साल पहले तो ये बहुत ज्यादा फैल गई थी और कई मरीज जो थे वो इस स्थिति में चले गए कि मृत्यु ही हो जाती है। ये बीमारी ऐसी है कि थोड़ा भी बढ़ी तो फिर मृत्यु होती है क्योंकि फेफड़े पूरी तरह खराब हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी कोई हमारे जानने वाले थे और उनकी युगल, उसको ये स्वाइन फ्लू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आईसीयू में थी वो, कि ये हम नहीं कह सकते कितने दिनों की मेहमान है क्योंकि बीमारी जो है वो कंट्रोल से बाहर है, हम इस स्थिति में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते और हमारे पास इसका कुछ ज्यादा इलाज भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे वही कहा फोन करके कि दीदी ऐसे सीरियस हैं और हाँ थोड़ा बाबा से योग लगाइए, बाबा ही कुछ कर सकता है अभी, कोई चमत्कार की ही आशा कर सकते हैं, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है हम योग लगाएंगे, बाकी तो हर आत्मा के अपने कर्मों का हिसाब किताब है, हम ज्यादा ड्रामा में इंटरफियर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी योग मैं जरूर लगाऊंगी, ऐसा मैंने उन्हें कहा, और आप चिंता मत करो सब ठीक कर देगा बाबा। ऐसे फिर उनके लिए भी योग लगाया और ऐसे ही एक दो दिन योग लगाया और तीसरे दिन उनका फोन आया मेरे पास कि वो डॉक्टर कहता है अभी ये रिकवर हो रहे हैं, पहले से इनकी हालत बेहतर है, हालांकि है अभी आईसीयू में लेकिन ठीक होने की उम्मीद है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं एक दो दिन और योग लगाती हूँ, उस आत्मा तक वो पहुंच रहा है, बाबा मदद कर रहे हैं उनको। फिर लगाया तो फिर उन्होंने बताया कि अब आईसीयू से बाहर आ गए हैं और कुछ दिन और 15 दिन वो आईसीयू से बाहर वहां वार्ड में रहे और एक महीने के अंदर अंदर पूरी तरह ठीक होकर के वो बहन अपने घर आ गई और वो अभी तक भी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल हमारे योग से ही वो फिर से उसको जीवन मिला, उसके अपने कर्म भी होंगे जरूर, लेकिन मदद मिली। जो वो एकदम इस हालत में पहुंच गई थी कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे, उसमें हमारा थोड़ा सा योग का सहयोग उस आत्मा को वो जीवन दान दे गया। तो ऐसे हम किसी भी आत्मा को, हमारे आसपास कोई भी ऐसी आत्मा है, हम सेंटरों पर भी हैं, कोई भी आत्मा ऐसी स्थिति में होती है हम उसके लिए योग करते हैं। कई बार हमें कहा जाता है दादियों के लिए हम योग करें, दादियों के लिए भी हम करते हैं, तो जरूर हम देखते हैं कि हमारे योग के वाइब्रेशन, शुभ भावना के वाइब्रेशन उस आत्मा को बल प्रदान करते हैं और वो उस नाजुक स्थिति से बाहर आ जाती है। तो ये सेवा तो हम सभी कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी मनसा पर अटेंशन देना है कि हमारी मनसा कमजोर ना हो या हम व्यर्थ संकल्पों में, नेगेटिव संकल्पों में इसकी लीकेज ना करें। ज्यादा से ज्यादा मन समर्थ संकल्प में रहे, शुभ चिंतन में रहे, शुभ चिंतक स्थिति में रहे और वो ज्ञान की स्थिति से हमें बनाना है। तो इस तरह से कोई ना कोई सेवा हम करते रहेंगे तो हम हमेशा ये अनुभव करेंगे कि बाबा की दुआएं हमें मिल रही हैं, बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं और सहज ही उड़ती कला का अनुभव करते हुए तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।